आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अध्याय वायु, जल व मृदा। ये कक्षा छठी के विषय विज्ञान का 17वां अध्याय है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस अध्याय में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने जल के अलग अलग उपयोगों के बारे में पढ़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने घरों में जो दैनिक कार्य आप करते हैं, रोज़ रोज़ जो कार्य किए जाते हैं, उसमें आप लोग जल का उपयोग करते हैं। जैसे कि खाना बनाने में, नहाने में, साफ सफाई करने में और पीने के रूप में भी आप लोग जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जल का उपयोग एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में भी किया जाता है। आपको पता है कि जल में आप ठोस की चीज या फिर द्रव्य की चीज या फिर गैस की चीजें, ये सभी के सभी चीजें आप पानी में मिला सकते हैं, इसीलिए जल को एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जल हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसमें ज्यादातर मात्रा पानी की होती है और इसीलिए ये पानी जो हमारे शरीर में होता है, ये हमारे शरीर में एक नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि एक नॉर्मल तापमान बनाने में हमारी मदद करता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान क्या होता है। हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इससे ज्यादा तापमान हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति को बुखार हो गया है। तो हमारे शरीर का ये जो नॉर्मल तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको मेंटेन करने में, बनाए रखने में हमारे शरीर में जो पानी होता है वही मदद करता है। उसके बाद आगे हमने बात की थी कि हमारे शरीर में जो पाचन कार्य होता है उसमें भी जल हमारी मदद करता है। आप लोगों को हमेशा आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आप लोगों को सुबह उठते ही एक गिलास पानी पी लेना चाहिए, इससे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आता ही होगा कि पानी जो होता है वो पाचन क्रिया में, आपने जो खाना खाया है उसको पचाने में मदद करता है और आपके पेट को अच्छे से साफ करने में भी मदद करता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जल का उपयोग कल कारखानों में और उद्योगों में किया जाता है, मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां पर भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स वगैरह जब यूज होते हैं तो उसमें पानी के अंदर ही केमिकल्स को मिक्स किया जाता है और फैक्ट्रीज के अंदर पानी का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट हमने बात की थी कि जल का उपयोग पेड़ पौधों और सब्जियों और फसलों को उगाने में किया जाता है। आप लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनको जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब भी हम किसी फसल को, पेड़ पौधों को या फिर किसी फल को, सब्जियों को उगाते हैं तो हमें उन्हें रेगुलरली नियमित रूप से पानी देना होता है, तो फसलों को भी पानी की जरूरत होती है। इतनी बात करने के बाद आगे हम लोगों ने जल चक्र के बारे में बात की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे धरती के ऊपर बहुत सारे पानी के स्रोत होते हैं, मतलब कि ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर प्राकृतिक रूप से पानी मौजूद होता है, जैसे कि समुद्र में पानी मौजूद होता है या फिर महासागरों में पानी मौजूद होता है, नदियों में, पोखरों में, तालाबों में पानी मौजूद होता है। तो जब बहुत तेज धूप होती है, जब सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो आप लोगों को पता है कि सूरज की रोशनी क्या करती है, आसपास की सभी चीजों को गर्म कर देती है। और जब वो सभी चीजों को गर्म करती है तो वो पानी के स्रोतों में जो पानी मौजूद होता है उसे भी गर्म कर देती है। और आपको ये भी पता है कि पानी जब गर्म होता है तो क्या होता है, पानी धीरे धीरे करके भाप में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों को पता है कि जब आप पानी को उबालते हैं तो थोड़ी देर बाद उस उबले हुए पानी में से भाप निकलने लगती है। वो भाप क्या होती है, वो भाप पानी ही होता है जो कि भाप में परिवर्तित हो जाती है। जब पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो पानी की बूंदें भाप में परिवर्तित होकर वायु में मिक्स हो जाती हैं, जिसे जलवाष्प कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो अगर खाना गर्म गर्म होता है, सब्जी, आप कभी ध्यान से देखिएगा कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, सब्जी जब बहुत गर्म होती है तो उसमें जो पानी होता है वो भाप में परिवर्तित होके उसमें से आपको धुआं सा दिखाई देता है। तो ये धुआं सा जो होता है ये पानी ही है, जो पानी की बूंदें भाप में परिवर्तित हो गई हैं वही आपको नजर आती हैं जब खाना गर्म होता है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या था, आपको समझना ये था कि जब भी कभी सूरज की रोशनी से पानी के अलग अलग स्रोतों में मौजूद जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और एक और खास बात मैंने आपको बताई थी कि जो जल वाष्प होता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है इसीलिए ये ऊपर की ओर उठता है। आप लोगों को पता है कि जो धुआं होता है वो भी बहुत हल्का होता है और इसीलिए धुआं कभी भी जमीन की नीचे की ओर नहीं आता, धुआं हमेशा ऊपर को जाता है, आसमान को जाता है। इसीलिए भाप जो होती है वो भी बहुत हल्की होती है, इसीलिए भाप भी ऊपर को जाती है और ऊपर को उठती है। तो जब ये भाप ऊंचाई पर चली जाती है, उस जगह पर चली जाती है जहां पर बादल बनते हैं, तो वहां पर जब ये चली जाती है तो ये भाप सारी की सारी इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होकर के ये बादल बनाती है। और उसके बाद जो ऊपर का तापमान है, जहां पर बादल मौजूद होते हैं वहां का तापमान काफी ठंडा होता है, तो धीरे धीरे करके ये जो जल वाष्प होते हैं ये जब ठंडे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये वापस से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षा के रूप में ये वापस से हमारी धरती पर गिर जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब जो जल वाष्प हमारे वायु में मौजूद होता है, रात को जब ठंड हो जाती है, मतलब जब तापमान ठंडा हो जाता है, तो ये जल वाष्प जो वायु में मौजूद होते हैं ये वापस से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। जल वाष्प को अगर आप ठंडा कर देंगे तो ये जल वाष्प वापस से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो बादल हैं वो भी जल वाष्प ही तो हैं, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो पानी की बूंदों में परिवर्तित होके वापस से धरती पर ही गिर जाते हैं, और धरती पर गिरने के बाद वो जिन पानी के स्रोतों से निकले थे वापस उसी में भर जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक चक्र समझ सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि आप एक चक्र जैसा देख पा रहे होंगे कि पानी के स्रोतों से पानी जो होता है जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बादल बनाता है, उसके बाद बादल जो होते हैं ठंडे होकर के वर्षा करते हैं और वर्षा वापस से पानी के स्रोतों में जाकर के मिल जाती है पानी के रूप में। तो यहाँ पर ये जो चक्र बन रहा है इसी को जल चक्र कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की थी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बहुत तेज वर्षा होने लगती है, बहुत ज्यादा वर्षा होने लगती है, तो क्या होता है, इतनी ज्यादा वर्षा होने की वजह से पानी का स्तर बढ़ जाता है पानी के स्रोतों में, और उसकी वजह से आसपास की जगह जो होती है, जितने भी घर होते हैं, इलाके होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। कई लोगों के घर टूट जाते हैं, चीजें पानी में बह करके दूर चली जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार की स्थिति को ही हम बाढ़ कहते हैं। और क्योंकि बाढ़ के आने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है लोगों के जीवन को और लोगों की संपत्ति को भी, इसीलिए बाढ़ को एक आपदा कहा जाता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन, यानी कि ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है, तो उसे आपदा कहा जाता है। और क्योंकि बाढ़ जो है उसके आने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए बाढ़ को भी एक आपदा कहा जाता है। और क्योंकि बाढ़ जो होती है प्राकृतिक रूप से आती है, इसीलिए एक प्राकृतिक आपदा कहलाती है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बाढ़ जो होती है उसे कोई इंसान नहीं करवा सकता। बाढ़ इसलिए आती है क्योंकि वर्षा जब बहुत ज्यादा होने लगती है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, और वर्षा प्रकृति ही करवाती है, तो इसीलिए प्रकृति के द्वारा की गई आपदा को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा होती है। तो एक तो ये पहली स्थिति मैंने आपको समझाई थी, उसके बाद मैंने आपको दूसरी स्थिति समझाई थी जिसमें जब बारिश होती ही नहीं है, बारिश इतनी कम होती है कि आसपास की सभी चीजें सूख जाती हैं, जितने भी पानी के स्रोत होते हैं गर्मी पड़ने की वजह से और बारिश के ना होने की वजह से वो सभी के सभी स्रोत सूख जाते हैं, जो आपकी फसलें होती हैं वो सब सूख जाती हैं, जितने भी जानवर वगैरह होते हैं पानी की कमी की वजह से उनकी मृत्यु होने लगती है, तो इस प्रकार की स्थिति को अकाल कहते हैं। और क्योंकि अकाल में भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है जीवन का और संपत्ति का, इसीलिए अकाल को या फिर सूखे को भी एक आपदा कहा जाता है। और क्योंकि ये भी प्रकृति के द्वारा ही करवाई जाती है तो इसे भी प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्राकृतिक आपदा समझाने के बाद गतिविधि 6 करने को कहा था, जो कि पेज नंबर 144 पर है। मैंने आपको कहा था कि आपको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करनी है कि बाढ़ में कैसे और क्या क्या चीजें होती हैं, अकाल में क्या क्या चीजें होती हैं, और साथ ही मैं आपको एक सूची तैयार करनी थी, आपको एक लिस्ट बनानी थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपके आसपास के इलाके में कहीं बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको अपने बड़ों से सहायता लेकर के एक सूची बनानी थी, साथ ही में आपको ये भी एक सूची बनानी थी कि राहत कार्यों के टाइम पर आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। अगर कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाए तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसकी भी आपको सूची बनानी थी। जैसे कि आपको खाने की जरूरत पड़ेगी तो आपको अगर कहीं पर बाढ़ आता है या सूखा पड़ता है तो आपको सबसे पहले खाने की चीजों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, ऊंचाई पर रख देना चाहिए ताकि खाने की चीजें खराब ना हो। बाढ़ जब आती है तो क्या होता है, सारी चीजें बह जाती हैं, जमीन के ऊंचाई तक भी पानी आता रहता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ चीजों को आपको थोड़ी ऊंचाई पर रख देना चाहिए, जैसे खाने की चीजें जो होती हैं उनको ऊंचाई पर रख देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। आपको एक टॉर्च रख लेना चाहिए जिसमें आपको बैटरी का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि बिजली उस टाइम पर नहीं होती है। जब बाढ़ आती है तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बाद आपको जरूरत की कुछ दवाइयों को भी संग्रहित करके रख लेना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं बाढ़ आती है या फिर आने वाली है ऐसी सूचना अगर आपको मिलती है तो आपको रेडियो को भी ठीक से रखना चाहिए ताकि आपको सरकार द्वारा अगर कोई सूचना भेजी जा रही है तो वो भी आपको मिल सके। आपको न्यूज पर रेगुलर ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपके घर में बिजली नहीं आएगी तो आप टीवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बैटरी पर चलता है, तो ऐसी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको एक सूची बनानी थी, लिस्ट बनानी थी कि किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपके आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो। और साथ ही में आपको ये भी लिखना था कि आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपके आसपास कहीं बाढ़ या सूखा पड़ता है। तो आपको अपने आसपास के जितने कमजोर लोग होते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग जो होते हैं या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं, औरतें होती हैं, इन सभी को सबसे पहले आपको सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहिए। उसके बाद आपको खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में जो जीव जंतु होते हैं जैसे कि गाय या फिर कोई और छोटे जीव जंतु जो होते हैं जो खुद की सहायता नहीं कर सकते, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। सरकार को आपको पत्र लिखना चाहिए, जल्द से जल्द आपको मीडिया तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो यही सब चीजें आप कर सकते हैं अगर आपके आसपास कहीं कोई मुसीबत आती है तो। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की थी कि सूखा जब पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी क्यों हो जाती है, पानी की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब वर्षा होती है पहले से तो लोग उसका संग्रहण नहीं करते, लोग उसको इकट्ठा करके नहीं रखते, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर आगे हम लोगों ने जल संग्रहण के बारे में पढ़ा था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे धरती पर पीने की पानी जो है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। बाकी जो पानी है वो खारा पानी है। महासागर का या समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, तो उसका सीधा सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पीने का पानी है वो बहुत कम है और उसके उपयोग बहुत ज्यादा है। पीने की पानी की जरूरत हमारे पौधों को भी होती है, जीव जंतुओं को भी होती है और मनुष्यों को भी होती है। और आपको ये भी पता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वर्षा असंतुलित हो गई है, बारिश कभी कम पड़ती है कभी ज्यादा पड़ती है, और उद्योगों को भी यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह को भी पानी की जरूरत होती है, वो भी बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, और हर एक इंसान अपने अपने घरों में भी पानी का इस्तेमाल भी करते हैं और पानी बहुत ज्यादा वेस्ट भी करते हैं, और इसी के वजह से पानी की जो मात्रा है धरती पर उसमें निरंतर कमी आती जा रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो वर्षा का पानी होता है उसको हमें पहले से ही इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, कहीं पर उसको भंडारित कर लेना चाहिए, कहीं पर उसे एकत्रित कर लेना चाहिए, जिससे बाद में जाके हम लोगों को पानी की कमी की समस्या ना झेलनी पड़े। तो वर्षा के जल को इकट्ठा करके भंडारण करना, कहीं पर स्टोर करके रखना, इसी प्रक्रिया को ही जल संग्रहण करते हैं। और उसके बाद मैंने आपको जल संग्रहण की तकनीक भी समझाई थी कि आप लोग किस तरीके से जल संग्रहण कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको अपने छत पर एक पाइप लगानी होती है, और वो पाइप आपको क्या करनी होती है, वो पाइप आपको जमीन के अंदर गाड़ देनी होती है, जिससे कि जब बारिश हो तो छत पर जो पानी आपके पड़े बारिश की, वो पाइप के जरिए जाकर जमीन में बनाए गड्ढे में वो सारा पानी पहुंच जाए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बारिश का पानी जमीन में बनाए गड्ढे में पहुंच जाएगा तो वो धीरे धीरे करके रिस रिस करके जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पर जमीन के अंदर जो स्वच्छ पानी होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग हैंडपंप के जरिए या कुओं के जरिए करते हैं, वहां पर ये पानी रिस रिस करके साफ होकर के पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग जल संग्रहण कर सकते हैं। आप लोग अपने छत पर एक पाइप लगा सकते हैं और वो पाइप क्या करेगी, उस छत पर जैसे ही बारिश का पानी पड़ेगा वो पाइप उस पानी को जमीन के अंदर पहुंचा देगी, जहां पर आपने जमीन के अंदर गड्ढा बनाया हुआ होगा, और वो पानी जो बारिश का पानी होगा जमीन के गड्ढे में धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के बाद वो रिस रिस सरफेस करके जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, वहां पर जहां से साफ पानी आप लोग निकाल करके बाद में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो तकनीक है, इसी को जल संग्रहण कहते हैं। और यहां तक बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और आज की क्लास को शुरू करते ही हम लोग बात करेंगे कि जल का मित व्ययता से उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कि पानी को आप लोग ध्यान पूर्वक बहुत सावधानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप काम ये कर सकते हैं कि नल से आप पानी व्यर्थ ना बहाएं। आप जब भी ब्रश करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं तो आपको पानी फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपका इस्तेमाल खत्म हो जाए तो आपको नल बंद कर देना चाहिए। पानी नल से वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इस्तेमाल के दौरान ही नल को ऑन करना चाहिए। इस्तेमाल हो जाते ही आपको नल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरा आपको क्या करना चाहिए, पानी के लीक होने को तुरंत ठीक करवाएं। मतलब कि अगर आपका नल ऐसा है कि जो लीक करता रहता है, उसमें कंटिन्यूअसली लगातार पानी टपकता रहता है, वेस्ट होता रहता है, तो आपको नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद करके भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। उसके बाद अगला है कि आपको कम शक्ति वाला वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जब आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी लगता है, उसमें कपड़ों को धोने में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। और वो पानी, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट मिल जाता है, उसमें साबुन मिल गया होता है, इसीलिए उस पानी का आप उपयोग किसी और चीज में नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको वॉशिंग मशीन ऐसा खरीदना चाहिए जिसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़ती हो। कम पावर वाले वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उसके बाद अगला है, नाली को साफ रखें। तो आपके घर के आसपास जो नाली वगैरह होंगे उनको आपको साफ रखना चाहिए। और उसके बाद अगला है, आपको धीमा फ्लश शौचालय या फिर खाल शौचालय का उपयोग करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि जब भी आप शौचालय का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फ्लश दबाने से बहुत सारा पानी जो होता है वो उसमें वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसा फ्लश वाला शौचालय यूज करना चाहिए जो कि धीमा हो, जिसमें आप कम पानी इस्तेमाल करते हो। या फिर आप खाद शौचालय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद शौचालय के बारे में आप लोग अधिक जानकारी आपको चाहिए हो तो आप गूगल पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगी जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें नॉलेज हो जाएगी कि खाद शौचालय क्या होते हैं। तो खाद शौचालय ऐसे शौचालय होते हैं जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसमें भूसे का इस्तेमाल और मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और उसी के इस्तेमाल से जो शौचालय होता है प्रयोग होता है। और इसमें पानी का इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है और इससे खाद बनाई जाती है। तो ये खाद शौचालय जो होते हैं ये गांव देहात के इलाकों में ज्यादा प्रचलित होते हैं, क्योंकि वहां पर सीवेज सिस्टम नहीं होता है, वहां पर नालियों वगैरह की कमी होती है, सीवेज की बड़ी बड़ी नालियों की कमी होती है, इसीलिए वहां पर खाद शौचालय ज्यादा प्रचलन में होते हैं। उसके बाद अगला है कि आप जब ब्रश या शेविंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको नल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रश कर रहे होंगे या शेविंग कर रहे होंगे तो आपको पानी की उस वक्त जरूरत नहीं होगी। आप जब ब्रश कर चुके होंगे तब आपको कुल्ला करने के लिए पानी की जरूरत होगी, तो इसीलिए आपको सिर्फ तब ही नल को ऑन करना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हो, उस वक्त आप नल को बंद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप पानी बचा सकते हैं और पानी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा है कि आप शावर के बजाय बाल्टी से नहाएं तो भी आप पानी बचाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप शावर से नहाते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता, आपको अंदाजा नहीं हो पाता कि आपने पानी कितना इस्तेमाल कर लिया है, तो उसी की वजह से आप ज्यादा पानी इस्तेमाल कर जाते हैं। लेकिन बाल्टी से जब आप नहाते हैं तो आपको पता रहता है कि आप पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बाल्टी में डाल के पानी से नहाएंगे तो आप पानी ज्यादा वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी तो हम लोगों ने उपाय पढ़ लिए जिनके मदद से हम लोग पानी को बचाने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक वायु और जल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है कि मृदा बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। मृदा मतलब कि मिट्टी। मिट्टी सभी के लिए जरूरत होती है क्योंकि मिट्टी में ही हम लोग पौधे उगाते हैं और उन पौधों से ही हमें खाना मिलता है। तो इसीलिए मिट्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मिट्टी जो होती है वो पौधों की जड़ों को बहुत मजबूती से पकड़ के रखने में हमारी मदद करती है। और मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे जड़ों के माध्यम से, जड़ों के जरिए उन पोषक तत्वों को वो अपने अंदर लेते हैं और मजबूत पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी होती है पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि मिट्टी होती क्या है। मिट्टी हमारी धरती का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो परत है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी बनती कैसे है, जो चट्टान होते हैं, पहाड़ और पर्वत होते हैं, उनसे जब टकराती हैं चीजें और हवा से या फिर पानी की वजह से, जब वो चट्टाने उनमें से जब कुछ टुकड़े आ जाते हैं तो चट्टान घिसने की वजह से उसमें से कुछ टूट फूट जाती हैं, जो उसकी चीजें वही जाकर के बाद में धरती के ऊपर की लेयर पर, ऊपर की सतह पर जाके जम जाती है, तो वही जाकर के मिट्टी बनाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कभी कि जब आप पत्थर को रगड़ते हैं तो उससे कुछ पाउडर जैसा बनने लग जाता है, तो इसी तरीके से जो पर्वत और पहाड़ होते हैं जब ये समय के साथ साथ रगड़ खाने लगते हैं वायु की वजह से या फिर जल की वजह से, तो इनमें रगड़ने की वजह से उनका पत्थर या पहाड़ का जो मजबूत स्ट्रक्चर होता है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो पाउडर बन जाता है, और वही पाउडर जाकर के धरती के सबसे ऊपर वाली परत पर जम जाती है और बाद में मिट्टी का निर्माण करती है। और साथ ही में अगर आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ से कुछ पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सूखे पत्ते हो चाहे गीले पत्ते हो, ये पेड़ से गिरने के बाद जैसे ही मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में आते हैं, ये सड़ने लग जाते हैं और उसके बाद खाद में परिवर्तित होके ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो जैविक चीजें होती हैं ये भी सड़ने और गलने के बाद में मिट्टी में ही मिल जाती हैं, और इसी मिश्रण को ही हम मिट्टी कहते हैं। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जो चट्टानों से पाउडर आ रहा है वो, और जो सड़ने गलने से चीजें बन रही हैं, खाद वगैरह बन रही हैं, इनका जो मिश्रण होता है धरती के सबसे ऊपर वाली परत बनाता है, इसी को मिट्टी कहा जाता है या फिर मृदा कहा जाता है। उसके बाद मिट्टी जो होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। उसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपको गतिविधि 7 करने के लिए कहा गया है, जो कि पेज नंबर 145 में है। आपको क्या करना है इस गतिविधि में, आपको एक पहले कांच का गिलास लेना है, खाली गिलास लेना है, और उसके बाद आपके आसपास जो भी बगीचे या फिर कोई खेत होंगे वहां से आपको एक मुट्ठी मिट्टी निकाल लेनी है, और उस मिट्टी को आपको उस गिलास में डाल देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस गिलास में आपको पानी भर देना है, और उसके बाद मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से, जो आपने मिट्टी डाली हुई है गिलास के अंदर, कांच के गिलास के अंदर, और जिसमें आपने पानी मिलाया हुआ है, तो इस मिश्रण को आपको बहुत अच्छे से इसका घोल बना देना है, और उसके बाद आपको कुछ घंटों के लिए ये मिश्रण कहीं ऐसी जगह रख देना है जहां पर ये हिले डुले ना। ऐसी जगह पर आप रख देंगे तो क्या होगा, जब आप कुछ घंटों के बाद देखने आएंगे उस गिलास को, तो आपको उसमें अलग अलग परत दिखाई देगी, मिट्टी की अलग अलग आपको परत दिखाई देगी। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र 17.9 पेज नंबर 145 में आपको एक गिलास की पिक्चर दिखाई गई है, और उसमें आपको मिट्टी की अलग अलग लेयर्स दिखाई गई हैं। तो इसी तरीके से आपके गिलास में भी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स दिखने लगेंगी जब आप कुछ देर बाद उस गिलास को देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इस गिलास के अंदर, यहाँ पर आप जो सबसे ऊपर वाली लेयर देख रहे हैं जिसको ह्यूमस लिखा गया है, तो ह्यूमस वो लेयर होती है जहां पर वो सभी पदार्थ होते हैं, जो जैसे आप लोगों को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पेड़ से पत्तियां गिर जाती हैं या सूखी लकड़ी गिर जाती है या फिर कुछ भी चीजें ऐसी जो सड़ या गल सकती हैं, तो वो सभी चीजें सड़ गल के मिट्टी के सबसे ऊपर वाली परत पर होती हैं, और उसी परत को ह्यूमस कहा जाता है। और ये जो सबसे ऊपर वाली परत है जिसका नाम है ह्यूमस, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि किसान जब फसलों को उगाते हैं तो वो उस फसल में कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि खाद ऐड करते हैं, उर्वरक ऐड करते हैं, ये सभी चीजें वो कहाँ मिलाते हैं, मिट्टी के सबसे ऊपर वाली परत पर ही मिलाते हैं। और ये सबसे ऊपर वाली परत की मिट्टी क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। उसके नीचे जब आप देखेंगे तो ह्यूमस के बिल्कुल नीचे होता है पानी, पानी की लेयर होती है, पानी की परत होती है सबसे ऊपर वाली मिट्टी की लेयर के नीचे। उसके बाद आप जल की परत के नीचे देखेंगे तो नीचे वाली परत का नाम है मृतिका। ये वो मिट्टी है जो आपने चिकनी मिट्टी देखी होगी, ऐसी मिट्टी जो थोड़ी थोड़ी गीली होती है, वही मिट्टी की लेयर को हम मृतिका कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। तो क्योंकि ये मिट्टी की परत पानी की परत के नीचे है इसीलिए ये गीली गीली सी होती है, और इसी गीली मिट्टी को हम मृतिका कहते हैं। मृतिका के नीचे जो परत है मिट्टी की वो बालू की होती है। बालू आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, संतरी रंग का होता है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा होता है, तो मृतिका के नीचे बालू की लेयर होती है, बालू की परत होती है, और बालू की परत के नीचे सबसे अंतिम परत जो है वो बजरी की होती है, मतलब कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसकी परत होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि मिट्टी में अलग अलग कण होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें मिक्स होने के बाद में मिट्टी को बनाती हैं, और मिट्टी में इतने सारे विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो अलग अलग टाइप की अलग अलग प्रकार की मृदा यानी मिट्टी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि अलग अलग प्रकार के फसल जो हैं वो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में ही बोए जाते हैं। जैसे आलू जो होता है वो हर प्रकार की मिट्टी में आप नहीं उगा सकते हैं। आलू को उगाने के लिए आपको विशेष प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है जिसे बलुई मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रकार किस आधार पर अलग अलग किए जाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि मिट्टी के जो कण होते हैं उसके आकार यानी कि साइज के आधार पर मृदा को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो अलग अलग मिट्टी के प्रकार बताए जाते हैं वो इस आधार पर बताए जाते हैं कि कौन सी मिट्टी के कण कितने बड़े हैं या कौन सी मिट्टी के कण कितने छोटे हैं, उस आधार पर मिट्टी को हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बलुई मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बलुई मिट्टी होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो मृदा के कण जो होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, बहुत ही ज्यादा कम वजन के होते हैं, हल्के होते हैं, हवादार होते हैं। मतलब कि इनमें बहुत आसानी से हवा पाई जा सकती है, ये बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते हैं आपस में, ये अलग अलग होते हैं और इसी वजह से हवादार होते हैं। और साथ ही में मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो बलुई मिट्टी होती है ये ठंडी होती है, बहुत ठंडी ठंडी सी होती है। और इसी वजह से ये ठंडी क्यों होती है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े सी मात्रा पानी की पाई जाती है, शुष्क होते हैं, मतलब इसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें मिल सकती हैं जिसकी वजह से बलुई मिट्टी ठंडी होती है। उसके बाद अगली प्रकार की मिट्टी जिसके बारे में हमें बात करनी है उसका नाम है मृणमय मृदा। मृणमय मृदा प्रकार की जो मिट्टी होती है इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसका मतलब यही होता है कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, साइज बहुत छोटा होता है मृणमय मृदा के कणों का। और ये जो सूक्ष्म कण यानी कि छोटे कण जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए कैसे होते हैं, पानी इनमें ज्यादा होता है और इसी वजह से ये आपस में चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और मृणमय मृदा के जो कण होते हैं इनमें वायु कम होती है, इनमें हवा कम होती है, पानी ज्यादा होता है और पानी ज्यादा होने की वजह से ही ये आपस में इसके कण जुड़े हुए होते हैं। और एक और खास बात है मृणमय मृदा की, और वो खास बात ये है कि इसी मिट्टी से जो कुम्हार होते हैं इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके घड़े वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि ये गीली मिट्टी होती है तो इसी मिट्टी के इस्तेमाल से घड़े वगैरह या दिए वगैरह बनाए जा सकते हैं। उसके बाद अगली प्रकार की मृदा के बारे में जिसे हमें पढ़ना है उसका नाम है दुमटी मृदा। जो दुमटी मृदा होती है इसमें दोनों प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसमें बड़े कण भी पाए जाते हैं और छोटे कण भी पाए जाते हैं, और मात्रा भी बराबर होती है। जितने ज्यादा बड़े कण होते हैं उतने ही ज्यादा छोटे कण भी होते हैं, दोनों बराबर होते हैं मात्रा में। तो ये जो दुमटी मिट्टी होती है इसको आप दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। और एक तरीके से दोमट मिट्टी जो होती है वो मिश्रण होती है मृणमय मृदा की और बलुई मिट्टी की। तो ये जो दोमट मिट्टी होती है इसमें बलुई मिट्टी भी होती है और चिकनी मिट्टी यानी कि मृणमय मृदा भी होती है, और दोनों बराबर मात्रा में होती है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि मृणमय मृदा को आप चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है घड़े वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये जो मृणमय मृदा होती है इसे आसान भाषा में चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो दोमट मिट्टी है यानी कि दुमटी मिट्टी जो होती है इसमें बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी की मात्रा बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको पता है बलुई मिट्टी में ज्यादा हवा होती है, पानी कम होता है, लेकिन चिकनी मिट्टी में विपरीत होता है, पानी ज्यादा होता है और हवा कम होती है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार की मिट्टी जब दुमटी मिट्टी में मिलती है तो इसी वजह से दुमटी मिट्टी जो होती है उसमें पानी भी बराबर होता है और उसमें हवा भी बराबर होती है। तो ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें अगर आप कोई पौधे वगैरह उगाएं तो वो बहुत अच्छे से उगते हैं। और ये जो मिट्टी होती है इसमें उर्वरक भी बहुत अच्छे से होते हैं, इसकी उर्वरक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, इसमें फसल बहुत अच्छे से उगते हैं। तो इस मिट्टी का इस्तेमाल आप फसल उगाने के लिए कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो दोमट मिट्टी होती है इसका इस्तेमाल घर वगैरह बनाने के लिए भी पुराने जमानों में किया जाता था। जो झोपड़ी वगैरह बनाई जाती थी उसमें इसी मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। और आजकल भी गांव देहात के इलाकों में आपको अगर कोई मिट्टी के घर दिखते हैं तो उस मिट्टी में आपको पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी से वो घर बना हुआ है वहां पर दोमट मिट्टी का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब दोमट मिट्टी को भूसे के साथ मिक्स करके दीवार बनाई जाती है तो वो थोड़ी कुछ दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है और उस प्रकार के घर में रहा जा सकता है, क्योंकि गर्मी में वो घर ठंडे होते हैं और ठंड में गर्माहट देते हैं। तो इस प्रकार से घर भी बनाए जा सकते हैं दोमट मिट्टी के इस्तेमाल से। तो यहाँ पर आप लोगों ने मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बारे में और उसके अलग अलग इस्तेमालों के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब मैं आज की क्लास को यहीं पर खत्म कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपने जो आज की क्लास में पढ़ा है उसको खुद से एक बार रिवाइज कर लेना है। कहीं पर आपको दिक्कत आ रही हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगी और अगले क्लास में हम लोग ये अध्याय खत्म करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।